जब हम किसी बीमारी या चोट के बारे में बात करते हैं ना, तो आमतौर पर एक उम्मीद होती है कि सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट होगा, एकदम किसी इंजीनियरिंग की तरह सटीक।
हाँ बिल्कुल, जैसे एक्सरे की रिपोर्ट होती है।
सही कहा। अगर किसी के हाथ की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में वो सफेद टूटी हुई लाइन साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस उसकी ओर इशारा करके कहता है कि देखिए समस्या यहाँ है।
एक क्लियर डायग्नोसिस और एक क्लियर सॉल्यूशन। आधुनिक दुनिया में हमें ना इस तरह की स्पष्टता की आदत सी हो चुकी है।
एकदम, हमें हर चीज को देखना, उसको नापना और उसको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में रखना पसंद है। इससे हमें एक तरह का सुकून मिलता है कि हम सिचुएशन को पूरी तरह कंट्रोल कर रहे हैं।
लेकिन कहानी तब पूरी तरह पलट जाती है जब हम हजारों साल पुराने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना और उन्हें समझना शुरू करते हैं। वहां अचानक वो जो एक्सरे की मशीन है ना, वो पूरी तरह खराब हो जाती है। सही बात है, सब धुंधला हो जाता है वहां।
हाँ, हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो हमारी आधुनिक सोच के हिसाब से बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ है। प्राचीन कविताओं और ग्रंथों को पढ़ना किसी रहस्य को सुलझाने जैसा ही है, जहां एक छोटा सा शब्द या एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरी कहानी का रुख बदल सकता है।
बिल्कुल, और यही वजह है कि आज का हमारा ये गहरा विश्लेषण इतना दिलचस्प होने वाला है।
हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। आज हम डॉक्टर जॉन वॉल्टन के नोट्स के जरिए द बुक ऑफ जॉब के चैप्टर्स 22 से 27 के आखिरी हिस्से को अनपैक करने वाले हैं।
ये वो हिस्सा है जहाँ जॉब और उसके दोस्तों के बीच तीसरे दौर की बहस चल रही है।
राइट, और यहाँ उस लैंग्वेज और सिंटैक्स को समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि वही हमें एक ऐसे व्यक्ति के दिमाग के भीतर ले जाएगी जो हर कीमत पर अपनी सत्यनिष्ठा पर अडिग है।
और ये तीसरा दौर, जिसे हम साइकिल 3 भी कहते हैं, कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है।
यहाँ तक आते आते ना एक अजीब सी थकान और निराशा दोनों तरफ महसूस होने लगती है।
हाँ, मतलब जॉब के दोस्तों के पास नए तर्क लगभग खत्म ही हो गए हैं।
एग्जैक्टली, जोफार जो पहले काफी बोल रहा था, वो इस पूरे दौर में बिल्कुल चुप है, वो एक शब्द भी नहीं कहता।
बिलदाद की बात अगर हम देखें तो वो बहुत ही छोटी और निराश हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे ये बहस ना अपनी आखिरी सांसें ले रही है।
पर जब तर्क कमजोर पड़ने लगते हैं, तभी शब्दों का असली छुपा हुआ अर्थ बाहर आने लगता है ना।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब हम जॉब के 22वें अध्याय के वर्सेस 2 और 3 को देखते हैं तो वहाँ ट्रांसलेशन की एक ऐसी समस्या खड़ी होती है जो पूरे पर्सपेक्टिव को हिलाकर रख देती है।
हाँ, वो ट्रांसलेशन वाला मुद्दा बहुत गहरा है।
आमतौर पर जो प्रसिद्ध ट्रांसलेशंस हम देखते हैं, जैसे NIV या कुछ और स्कॉलर्स के अनुवाद, वहाँ इन लाइन्स को कुछ इस तरह पेश किया गया है कि क्या कोई इंसान ईश्वर का भला कर सकता है? क्या तुम्हारे निर्दोष होने से ईश्वर को कोई फायदा होगा?
जो कि सुनने में एक आम धार्मिक सलाह लगती है।
हाँ, जैसे एलिफास कह रहा हो कि ईश्वर को तुम्हारी अच्छाई की जरूरत नहीं है।
लेकिन डॉक्टर वॉल्टन इस ट्रांसलेशन को पूरी तरह चैलेंज करते हैं।
यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि डॉक्टर वॉल्टन ने इस इकलौती लाइन पे फोकस करने के बजाय उस सिंटैक्स को समझा जो जॉब की ही किताब के दूसरे हिस्सों में इस्तेमाल हुआ है,
खास तौर पर जॉब 13:7 और 21:22 में है ना।
हाँ, उन्हीं वर्सेस में। उनके अनुसार प्राचीन भाषा की इस वाक्य संरचना में मास्किल नामक एक शब्द है जिसका अर्थ बुद्धिमान मध्यस्थ या एक वाइज मीडिएटर होता है।
पर मुद्दा यह है कि वह इस वाक्य का ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि सब्जेक्ट है।
ओ अच्छा, तो ये पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया।
ये मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी 3000 साल पुराने कानूनी कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसलेट कर रहे हो और उसमें एक कीवर्ड का प्लेसमेंट बदल दें।
एकदम सही एग्जांपल है। और इसी वजह से डॉक्टर वॉल्टन के अनुसार इस लाइन का असली अनुवाद कुछ इस तरह होना चाहिए कि क्या कोई बुद्धिमान मध्यस्थ जो ईश्वर की ओर से काम कर रहा है किसी इंसान का भला कर सकता है? जब तुम खुद को सही साबित करते हो तो क्या ईश्वर अनुकूल प्रतिक्रिया देगा?
वेट, मुझे इसे ठीक से समझने दीजिए। तो आपका मतलब है कि एलिफज यहाँ जॉब को कोई जनरल स्पिरिचुअल लेक्चर नहीं दे रहा है, बल्कि वो उसे सीधे तौर पर एक लीगल थ्रेट दे रहा है।
हाँ, वही तो पॉइंट है।
वो कह रहा है कि कोई भी मीडिएटर या वकील अब तुम्हारा बचाव नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। और इस लीगल कॉन्टेक्स्ट को सपोर्ट करने के लिए इस हिस्से में 2 और बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। एक है सदक और दूसरा है तमाम।
अच्छा, इनका मतलब क्या होता है इस कॉन्टेक्स्ट में?
यहाँ सदक का मतलब सिर्फ मॉरली अच्छा होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कानूनी रूप से खुद को कोर्ट में सही साबित करना, यानी जस्टिफाई करना।
ओके, और तमाम?
तमाम का अर्थ है अपने कामों का पूरा हिसाब किताब पेश करना, एक फुल अकाउंट देना। इन शब्दों के इस्तेमाल से ये पूरा संवाद एक फिलोसॉफिकल बहस से निकलकर एक सख्त कानूनी मुकदमे में बदल जाता है।
बाप रे, इसका मतलब एलिफाज असल में जोब को बता रहा है कि तुम्हारा ये केस कोर्ट से सीधा बाहर फेंक दिया जाएगा।
एग्जैक्टली
ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, एक स्पिरिचुअल एडवाइस और एक लीगल शटडाउन में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है।
और कहानी यही नहीं रुकती।
हाँ वही तो, जो चीज मुझे और भी ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ट्रांसलेशन की ये समस्या सिर्फ इन लीगल शब्दों तक रुकी नहीं है, इसने तो उस पूरे नजरिए को ही बदल दिया है कि प्राचीन लोग इस यूनिवर्स को या ब्रह्मांड को देखते कैसे थे।
कॉस्मिक ज्योग्राफी की बात कर रही हैं आप?
हाँ वही, अगर हम जोब 26:7 की बात करें, जहाँ आमतौर पर ट्रांसलेशन होता है कि वह पृथ्वी को शून्य पर लटकाता है या ही सस्पेंड्स द अर्थ ओवर नथिंग,
जो कि आज के हिसाब से बहुत साइंटिफिक साउंड करता है।
वही ना, मैं जानती हूँ कि कई लोग इस लाइन को क्वोट करते हैं ये साबित करने के लिए कि प्राचीन कविताओं में भी ग्रेविटी और आउटर स्पेस का ज्ञान था। लोग सोचते हैं कि देखो जोब के समय में ही लोगों को पता था कि हमारा प्लैनेट स्पेस में बिना किसी सहारे के लटक रहा है।
सच कहूं तो ये अप्रोच थोड़ी गलत है।
इसको जबरदस्ती उन प्राचीन कविताओं पर नहीं थोप रहे हैं, ये तो पूरी तरह से एक एनाक्रोनिज्म लगता है, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पुराने लोग टेलीस्कोप से देखकर लिख रहे थे।
अगर हम इसे एक बड़े संदर्भ में देखें तो आपका ये संदेह 100% सही है। डॉक्टर वॉल्टन अपनी एनालिसिस में इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हमें मॉडर्न साइंस को एंशिएंट टेक्स्ट में नहीं ढूंढना चाहिए।
तो उनका पर्सपेक्टिव क्या था फिर?
सबसे पहला कंसेप्ट जो हमें अपने दिमाग से निकालना होगा वो है अस्तित्व, यानी एग्जिस्टेंस की हमारी मॉडर्न डेफिनेशन। आज हम सोचते हैं कि जो चीज मैटर या मटेरियल से बनी है, जिसका मास है, उसका अस्तित्व है।
हाँ, आमतौर पर हम यही मानते हैं।
लेकिन प्राचीन लोगों के लिए अस्तित्व का मतलब मटेरियल नहीं बल्कि ऑर्डर और फंक्शन था। जो चीज व्यवस्थित थी, जिसका कोई फंक्शन था, सिर्फ वही उनके लिए एग्जिस्ट करती थी। जो चीज केओटिक थी, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं था, उसे वो अस्तित्वहीन मानते थे।
होल्ड ऑन, ये थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल है। तो आप कह रहे हैं कि अगर एक एंशिएंट व्यक्ति किसी पूरी तरह से केओटिक रेगिस्तान को या एक तूफानी समुद्र को देखता, तो उसके सामने रेत और पानी होने के बावजूद वो यही कहता कि ये जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती?
हाँ।
ये लॉजिक काम कैसे करता है?
इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ईंटों और लकड़ियों का एक ढेर पड़ा है। एक एंशिएंट माइंड के लिए वो सिर्फ कचरा है, उसका कोई फंक्शन नहीं है।
ओके।
लेकिन जब आप उससे घर बना देते हैं, उसमें ऑर्डर ले आते हैं, तब वह घर एग्जिस्ट करना शुरू करता है। सेम प्रिंसिपल यूनिवर्स पर लागू होता था।
अच्छा, तो तूफानी समुद्र और अनजान रेगिस्तान उनके लिए एग्जिस्टेंस के बाहर थे, क्योंकि वहां इंसानी व्यवस्था नहीं थी, वहां सिर्फ केओस था।
बिल्कुल। इसलिए जब एंशिएंट टेक्स्ट नथिंग या शून्य की बात करते हैं, तो वो आउटर स्पेस के वैक्यूम की बात नहीं कर रहे, वो उस केओटिक स्टेट की बात कर रहे हैं जहां ऑर्डर नहीं है।
ओके, अब ये पिक्चर थोड़ी क्लियर हो रही है। और अगर हम इस ऑर्डर वर्सेस केओस वाले लेंस से उन हिब्रू टर्म्स को देखें जो जोब 26:7 में आए हैं, तो पूरी पेंटिंग ही बदल जाती है। जैसे उसमें एक टर्म आता है जफोन।
हाँ, जफोन बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है।
मैंने पढ़ा था कि आम ट्रांसलेशंस में इसको सिंपली नॉर्थ या उत्तर दिशा मान लिया जाता है, पर अब लग रहा है कि बात किसी कंपस डायरेक्शन की नहीं हो रही है।
बिल्कुल नहीं, प्राचीन काल की कॉस्मोलॉजी में जफोन सिर्फ एक दिशा नहीं थी, इसे एक देवताओं का पर्वत, एक कॉस्मिक माउंटेन माना जाता था। ये वो जगह थी जहां एंशिएंट लोग मानते थे कि स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं, जहां देवताओं की सभाएं होती हैं।
वाओ। और उसके बाद जो शब्द है तोहू, NIV ट्रांसलेशन में से एक एम्प्टी स्पेस या खाली जगह बताया गया है।
लेकिन अगर आप जेनेसिस की शुरुआत पढ़ें, तो वहां भी यही शब्द तोहू आता है, और वहां इसका मतलब आउटर स्पेस नहीं बल्कि वो अस्तित्वहीन और अव्यवस्थित कॉस्मिक जल है, वो प्राइमोर्डियल वाटर्स जो ऑर्डर आने से पहले मौजूद थे।
तो हम एसेंशियली एक पहाड़ और एक केओटिक कॉस्मिक समुद्र की बात कर रहे हैं। और वो शब्द तला, जिसका ट्रांसलेशन ज्यादा लोग ऊपर लटकाना या सस्पेंस ओवर निकालते हैं, जैसे ग्रेविटी अर्थ को स्पेस में सस्पेंड करती है।
यहीं पर एक और ट्रांसलेशन का बहुत बड़ा फर्क आता है। तला का अर्थ किसी एम्प्टी स्पेस के ऊपर लटकाना नहीं होता, बल्कि किसी चीज पर लटकाना होता है।
किसी चीज के ऊपर?
हाँ, जैसे एंशिएंट टाइम्स में सजा देने के लिए किसी को पेड़ पर लटकाया जाता था ना, वो फिजिकल सपोर्ट पर होता था।
और इस सब में सबसे बड़ा ट्विस्ट उस लाइन में एरिथ्स शब्द के साथ है।
एरिथ्स, जिसको आमतौर पर सब प्लैनेट अर्थ मान लेते हैं।
सही कहा।
लेकिन डॉक्टर वॉल्टन समझाते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ एरिथ्स का मतलब हमारा ग्रह नहीं बल्कि पाताल या नेदर वर्ल्ड है।
ओह माय गॉड, इसका मतलब अगर हम इन सभी नए अर्थों को एक साथ मिला दें तो हम यूनिवर्स के फिजिकल मैकेनिक्स को देख ही नहीं रहे हैं बल्कि एक एंशिएंट मिथोलॉजिकल मैप को देख रहे हैं।
एकदम सच। तो डॉक्टर वॉल्टन के हिसाब से इसका सही ट्रांसलेशन कुछ इस तरह बनता है कि स्वर्ग को अंतरिक्षिक अशून्य यानी कॉस्मिक वॉटर्स पर फैलाया गया है और पाताल को अस्तित्वहीन चीजों पर लटकाया गया है।
ये तो बिल्कुल एक एक्सरे रिपोर्ट से निकलकर एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को देखने जैसा हो गया। यहाँ सोलर सिस्टम की तो बात ही नहीं हो रही।
वही मैं कह रहा था।
यहाँ बात हो रही है कि ईश्वर ने कैसे इस पूरे कॉस्मोस में केओस को ऑर्डर में बदला है। और अगर हम इस बात को सोचें कि जोब और उसके दोस्तों के लिए दुनिया का मतलब ही एक परफेक्ट ऑर्डर था, जहां हर चीज अपने फंक्शन के हिसाब से ठीक जगह पर है, तो अचानक से हमें समझ आने लगता है कि जोब के दोस्त उस पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे।
ये कनेक्शन पकड़ना बहुत जरूरी है। जोब के दोस्तों की थियोलॉजी ना इसी बात पर टिकी थी कि ईश्वर ने एक परफेक्ट ऑर्डर बनाया है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होगा और बुरे लोगों के साथ बुरा।
पर जोब की कंडीशन तो उस ऑर्डर को तोड़ रही थी ना। वो अच्छा था पर उसके साथ बुरा हो रहा था,
इसलिए अलीफाज अब नरम नहीं रहा। उसकी सारी सहानुभूति जो पहले चैप्टर्स में थोड़ी बहुत दिखी भी थी अब पूरी तरह गायब हो चुकी है। वो सीधे तौर पर जॉब पर अन्याय और बुरे कामों का आरोप लगाता है।
हाँ, वो उसे प्रैक्टिकली कंडेम कर रहा है।
वह कहता है कि जॉब, तुम जो बार बार एक वकील या मीडिएटर मांग रहे हो, यह सब सिर्फ एक ढोंग है। अलीफाज का मानना है कि ईश्वर सब जानता है और तुम्हें तुम्हारे किए की ही सजा मिल रही है।
और उसकी सलाह देखिए जो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। अलीफाज जॉब से कहता है कि तुम बस चुपचाप अपने पाप मान लो, अपना पश्चाताप कर लो। पर क्यों? क्या इसलिए ताकि जॉब स्पिरिचुअली क्लीन हो सके? नहीं।
तो फिर किस लिए?
वो कहता है कि पाप मान लो ताकि तुम्हें तुम्हारी खोई हुई संपत्ति, तुम्हारा सामान, तुम्हारी दौलत वापस मिल जाए। और सोचिए ये सुनने में कैसा लगता है कि जब तुम्हें तुम्हारा मटेरियल स्टफ वापस मिल जाएगा तब तुम एक अथॉरिटी बन जाओगे।
हाँ, एक लेक्चर सर्किट वाली बात।
वही, तुम लोगों के बीच जाकर भाषण दे सकोगे और दूसरों को ज्ञान दे सकोगे कि देखो मैं भटक गया था और ईश्वर ने मुझे फिर से आशीर्वाद दे दिया। और बिलदाद की बातें भी यहाँ कुछ खास मददगार नहीं है।
बिलदाद की तो बातें ही अब बहुत छोटी और निराश हो चुकी है। वह सिर्फ एक ही धुन गा रहा है कि ईश्वर महान है और इंसान मूल रूप से दोषपूर्ण और महत्वहीन है।
उन दोनों का एसेंशियली एक ही फोकस है।
हाँ, कि जॉब, तुम एसेंशियली फ्लॉड हो, इसलिए माफी मांगो और अपना स्टफ वापस ले लो। वे जॉब की इनर इंटेग्रिटी को तो देख ही नहीं पा रहे हैं। उनका फोकस सिर्फ उसके आउटर कंडीशंस पर है।
ये सिचुएशन आज के जमाने की टॉक्सिक पॉजिटिविटी का एक एक्सट्रीम रूप लगती है, जो अब सीधे सीधे विक्टिम ब्लेमिंग यानी पीड़ित को ही दोषी ठहराने में बदल गई है।
सही बात है।
मतलब सोचो उस इंसान के बारे में जो अपना सब कुछ खो चुका है, भयंकर फिजिकल और इमोशनल दर्द में है, और उसके सबसे करीबी दोस्त उसकी मानसिक स्थिति या उसकी सत्यनिष्ठा की परवाह करने के बजाय उसके सिर्फ सामान की वापसी की फिक्र कर रहे हैं।
वो बेसिकली उसे कह रहे हैं कि जॉब, फेक इट, बस सॉरी बोल दो और अपना स्टेटस वापस ले लो।
ये बहुत ही अकेला कर देने वाला एहसास होता होगा। तो इन सब कठोर और चुभने वाली बातों पर जॉब क्या प्रतिक्रिया देता है?
जॉब इस वक्त ना उनकी किसी भी बात में नहीं उलझता। वो अलीफाज की उन चुपती हुई बातों को लगभग नजरअंदाज कर देता है। वो अपने दोस्तों की आर्ग्यूमेंट से लड़ने के बजाय सीधे उस सच्चाई का सामना कर रहा है जो उनकी परंपरागत धार्मिक सोच से बिल्कुल अलग है।
वो क्या कहता है?
वो कहता है कि काश वो ईश्वर को ढूंढ पाता। जो भी रियलिटी चेक दे रहा है उन्हें, वो कहता है कि तुम लोग जिस परफेक्ट ऑर्डर की बात कर रहे हो, मैं जब दुनिया में देखता हूँ तो मुझे वो कहीं नजर नहीं आता। दुनिया व्यवस्थित नहीं है।
हाँ, जॉब उन्हें उनके आसपास की ऐसी रियलिटी दिखाता है जिसे वो इग्नोर कर रहे थे। वो देखता है कि बुरे लोग अपनी जिंदगी में ऐश कर रहे हैं, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, और जो गरीब या निर्दोष हैं वो उनके अत्याचार के तले दब रहे हैं।
ये रिट्रीब्यूशन प्रिंसिपल का टूटना ही तो है।
एकदम। जॉब का जो पूरा बिलीफ सिस्टम था, जिसे कर्म और फल का सिद्धांत कहते हैं कि अगर आप ईमानदारी से रहोगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा, वह सिद्धांत अब उसकी आंखों के सामने पूरी तरह टूट रहा है। उसका पर्सनल एक्सपीरियंस उसकी थियोलॉजी से क्लैश कर रहा है।
ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई गेमर पिछले 20 साल से एक कॉम्प्लेक्स वीडियो गेम खेल रहा हो। उसने गेम के सारे नियम, सारे कोड्स याद कर लिए हैं, वह पूरी ईमानदारी से रूल बुक के हिसाब से खेल रहा है और हमेशा जीतता आया है।
अच्छा एग्जाम्पल है ये।
लेकिन एक दिन अचानक उसे एहसास होता है कि किसी ने बैक एंड पर गेम के सारे रूल्स ही बदल दिए हैं। जो चाल पहले उसकी जीत तय करती थी, अब वह सीधे गेम ओवर की तरफ ले जा रही है।
उसका कंट्रोल छीन लिया गया है।
हाँ, कंट्रोलर उसके हाथ में है, लेकिन स्क्रीन पर जो हो रहा है उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। दुनिया उसके सामने पूरी तरह आउट ऑफ सिंक हो गई है।
ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। और इस आउट ऑफ सिंक दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि जॉब की उम्मीद अभी तक कम्प्लीटली खत्म नहीं हुई है।
वो अभी भी होप कर रहा है।
हाँ, वो अभी भी डीप डाउन उम्मीद करता है कि एक दिन इन बुरे लोगों की बुराई का अंत होगा, पर वो कंफ्यूज है। इसलिए जब बिलदाद उससे कहता है कि ईश्वर महान है और उसने विश्व में व्यवस्था बनाई है, उसकी शांति और विशालता को देखो, तो जॉब का जवाब बहुत शार्प होता है।
वो क्या कहता है बिलदाद को?
जॉब कहता है कि हाँ, ईश्वर ने पूरे विश्व में ऑर्डर लाया होगा, लेकिन मेरी अपनी जिंदगी में उसने सिर्फ अव्यवस्था और डिसऑर्डर ला दिया है। मेरी पर्सनल रियलिटी तुम्हारी कॉस्मिक थियोलॉजी से मैच नहीं करती।
इसलिए जॉब अपने दोस्तों की उस एडवाइस को पूरी तरह मानने से इनकार कर देता है कि वह झूठा पश्चाताप करे।
बिल्कुल, वो मानता ही नहीं है।
और यही उलझन और यही फ्रस्ट्रेशन इस पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ यानी क्लाइमैक्स की ओर ले जाती है, जो हमें जॉब चैप्टर 27 के वर्सेस 1-6 में मिलता है। यहाँ जॉब एक ऐसी शपथ लेता है जो मेरे ख्याल से लिटरेचर के सबसे पावरफुल मोमेंट्स में से एक है।
हाँ, वहाँ वो बहुत क्लियर बाउंड्री सेट करता है।
वह कहता है कि जब तक उसमें जान है, जब तक उसकी नाक में सांस है, उसके होंठ कोई झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन इस पॉइंट पर आकर हमें रुक कर सोचना चाहिए, यहाँ झूठ है क्या?
ये बहुत जरूरी सवाल है।
का मतलब है उन पापों को कबूल करना जो उसने किए ही नहीं है, अपने दोस्तों को शांत करने के लिए और अपना खोया हुआ स्टेटस वापस पाने के लिए झूठा पश्चाताप करना ही उसकी नजर में सबसे बड़ा झूठ है।
और यहाँ एक ऐसा पॉइंट खड़ा होता है जो इस नैरेटिव का बिल्कुल कोर है। यहाँ पर हमें इन चैप्टर से बाहर निकलकर किताब के शुरुआत में वापस जाना पड़ता है। आपको याद है किताब के शुरू में जो चैलेंजर था, उसने ईश्वर के सामने क्या शर्त लगाई थी?
हाँ, उसने तो एक बहुत ही सिनिकल दावा किया था।
उसने कहा था कि जॉब का धर्म, उसकी ईमानदारी और उसकी अच्छाई सिर्फ उसके फायदों पर टिकी है। चैलेंजर का मानना था कि जॉब सिर्फ इसलिए पायस है क्योंकि उसका घर भरपूर है, उसके पास सिक्योरिटी है, स्वास्थ्य है। डज जॉब फियर गॉड फॉर नथिंग?
ओ, मतलब उसने सोचा कि अगर इसका सामान छीन लिया जाए तो ये बदल जाएगा।
रियल बेनिफिट्स छीन लिए जाएं तो वो उसी वक्त ईश्वर को छोड़ देगा या उसको कर्ज करेगा।
ओह वाओ, अब सब डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। सोचिए, अगर जॉब इस वक्त आके ठग जाता और अपने दोस्तों की उस लेक्चर सर्किट वाली प्रैग्मैटिक एडवाइस को मान लेता
तो क्या होता?
अगर वह कहता कि ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि मैं पापी हूँ, बस मेरा सामान और मेरी हेल्थ मुझे वापस दे दो, तो एसेंशियली वो क्या कर रहा होता? वह चैलेंजर की बात को प्रूफ कर रहा होता। अगर वह झूठा पश्चाताप करता तो सीधे तौर पर चैलेंजर जीत जाता।
एकदम सही। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। अगर जॉब फॉल्सली रिपेंट कर लेता तो ये साबित हो जाता कि जॉब की सत्यनिष्ठा सिर्फ एक मुनाफा कमाने की स्ट्रैटेजी थी, उसकी डिवोशन प्योरली ट्रांजैक्शनल थी।
पर जॉब ने ऐसा नहीं किया।
नहीं किया, वो अपनी इनोसेंस पर अडिग रहा। डॉक्टर वॉल्टन यहां समझाते हैं कि जॉब भले ही थियोलॉजी के मामले में कंफ्यूज था, वह ईश्वर के कामों को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था, पर एक चीज जो अटूट थी वो थी उसकी सत्यनिष्ठा, उसकी इंटेग्रिटी।
उसने पूरे यूनिवर्स के सामने ये साबित कर दिया कि उसकी सच्चाई सम्मान के लिए नहीं थी, बल्कि सिर्फ सच्चाई के लिए थी।
सही बात है।
और इस रेजोल्यूशन के साथ ही ये डायलॉग सेक्शन, यानी जॉब और उसके दोस्तों के बीच का जो लंबा और थका देने वाला संवाद था, वो आखिरकार खत्म होता है। जोफर की चुप्पी, बिलडैड की छोटी बातें और एलिफाज का गुस्सा सब बेअसर साबित होते हैं
और चैलेंजर का शुरुआती दावा पूरी तरह से गलत साबित हो जाता है।
जॉब अपने दोस्तों की उस खोखली सलाह को पूरी तरह खारिज कर देता है जो उसे एक मटेरियल फायदे के लिए अपना जमीर बेचने को कह रही थी, और वह फाइनली उनसे अलग हो जाता है।
ये एक बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री थी उसकी।
का एनालिसिस हमें इस किताब को एक नए नजर से देखने पर मजबूर करता है। जॉब की कहानी सिर्फ सब कुछ खो देने, दुख झेलने या पेशेंस रखने की एक सिंपल कहानी नहीं है।
तो फिर आपके हिसाब से ये क्या है?
ये एक ऐसी डीप साइकोलॉजिकल नैरेटिव है जिसमें एक व्यक्ति किसी भी कीमत पर अपनी इंटरनल इंटेग्रिटी को बनाए रखता है, चाहे उसको लगने लगे कि पूरा कॉस्मिक ऑर्डर उसके खिलाफ है, चाहे उसके सबसे करीबी दोस्त उसे झूठा ठहराने लगे, वो अपना ग्राउंड नहीं छोड़ता।
और डॉक्टर वॉल्टन का फाइनल पॉइंट भी यही है कि जॉब की ये मॉरल विजय इस बात पर निर्भर नहीं थी कि उसके पास थियोलॉजी के हर कॉम्प्लेक्स सवाल का एक परफेक्ट आंसर था। उसकी जीत इस बात में थी कि उसने एक्सट्रीम प्रेशर में भी कोई झूठी कबूलियत नहीं की।
सही कहा।
उसने दुख के बिल्कुल सेंटर में होते हुए भी एक फायदे के लिए अपने सच को छोड़ने से इनकार कर दिया। जब आपके पास सपोर्ट करने वाला कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना बचे, तब भी अपने जमीर पर खड़े रहना, इससे बड़ा प्रमाण किसी इंसान की ईमानदारी का और क्या हो सकता है।
सच में ये एक मास्टर क्लास है इंटेग्रिटी पर। आज के सफर में हमने देखा कि कैसे एक 3000 साल पुराने टेक्स्ट की सिंटैक्स पूरी कानूनी बहस को बदल सकती है। हमने प्राचीन काल की उस कॉस्मोलॉजी को देखा जहां एग्जिस्ट करने का मतलब पदार्थ नहीं बल्कि ऑर्डर था।
और सबसे बड़ी बात, हमने एक अतूत इरादे को महसूस किया।
हाँ, उस इंसान के इरादे को जो अपनी डिग्निटी और सत्य को किसी भी मटेरियल कंफर्ट के ऊपर चुनता है। लेकिन इस सब को समझने के बाद मैं सभी श्रोताओं को एक आखिरी विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ।
बिल्कुल।
एक ऐसी थॉट जो भले ही एंशिएंट स्क्रोल्स पर ना लिखी हो, पर उनकी उन्हीं लाइनों के बीच से निकलकर आज हमारी मॉडर्न जिंदगी में आकर गिरती है। आज की हमारी मॉडर्न दुनिया को देखिए, आसपास नजर दौड़ाइए। ये दुनिया हमें हर दिन हर मोड़ पर समझौता करने पर मजबूर करती है।
हाँ, हर कदम पर एक प्रेशर होता है,
चाहे वो सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स हो, या सोसाइटी में फिट होने की कंपल्शन हो, या फिर कॉर्पोरेट दुनिया में आगे बढ़ने के लिए अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज करना हो। हमारी दुनिया हमें प्लेइंग अलोंग यानी सभी की बातों में हाँ मिलाने के लिए लगातार रिवॉर्ड करती है।
ये आज की एक कड़वी सच्चाई है।
जरा सा झूठ बोलकर या सिस्टम के हिसाब से खुद को बदलकर अपना सामान और स्टेटस बढ़ाना आज के टाइम में कितना आसान और एक्सेप्टेबल हो गया है। तो क्या आज के इस फास्ट पेस्ड मटेरियल ड्रिवन दौर में जॉब जैसी अटूट सत्यनिष्ठा रखना लगभग असंभव हो गया है?
ये बहुत ही गहरा सवाल है।
जैसा कि हमने शुरू में कहा था, कानूनी या आत्मिक सत्यनिष्ठा की चोट का कोई सीधा एक्सरे नहीं होता। जब आप अंदर से टूटते हैं तो वहां कोई सफेद लाइन नहीं दिखती जो दुनिया को दिखा सके कि आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। पर यह खुद से पूछने वाली बात है कि जब दुनिया आपसे खेलती है और आपको एक आसान रास्ता दिखाती है, तो आप अपने उस बिना दिखने वाले एक्सरे में सच्चाई को चुनते हैं या सम्मान को? इस अकेलेपन में विचार करने वाले मुद्दे के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। सोचिएगा जरूर।